उमया तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टाद्वैतशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्दा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे 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 कृष्णा। टेक्स्ट 42। नवैन्द्रभिर् नरदेवं पराक्यम् समातुम् अर्हसि अविपक्वबुद्धे तत्तेजसा दुर्विशेन गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि अकुतो मया प्रजा। ट्रांसलेशन। ओ माई बॉय, योर इंटेलिजेंस इज इमेच्योर and therefore you have no knowledge that the king, who is the best among human beings, is as good as the personality of Godhead. He is never to be placed on an equal footing with common men. The citizens of the state live in prosperity, being protected by his unsurpassable prowess. तो यहाँ पे शमिक ऋषि श्रृंगी को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो हमने देखा कि जब शमिक ऋषि को समझ में आता है कि श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, तो शमिक ऋषि को बहुत बुरा लगता है, बहुत वेदना होती है उनको, और अपने बच्चे श्रृंगी को ज्ञान दे रहे हैं। वो यहाँ पे बता रहे हैं अविपक्व बुद्धे, उसका मतलब है आपका बुद्धि अभी भी पक्व नहीं हुआ है, अभी भी कच्चा ही है, पूरा इमेच्योर, अनुभव नहीं है आपके पास, इसलिए आपको ये ज्ञान नहीं है कि राजा कौन है। राजा नरदेव है, भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए उनको साधारण मनुष्य की तरह ट्रीट किया नहीं जाता। हाँ, साधारण मनुष्य की तुलना उनकी होती नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि है, और उनके वजह से, ऐसे राजाओं के वजह से अभी भी राज्य में भद्र है, कुशल मंगल है। विदंति भद्राणी अकुतो भया प्रजा, तो ऐसे राजा के वजह से राज्य में प्रॉस्पेरिटी है, कुशलता है, मंगलता है, यश है, और सब लोग बिना भय के रह सकते हैं। पर आपने क्या किया है, क्योंकि आपका बुद्धि पक्व नहीं था, अविपक्व बुद्धि के साथ आपने ऐसे महान राजा को श्राप दे दिया। टेक्स्ट 43। अलक्ष्यमाने नरदेव नामने रतांग पानाव अयम अंगलोका सदा ही चोर प्रचुरो विनक्ष्यति अकर्ष्यमानो विवरूत वचना। Translation: My dear boy, the lord who carries the wheel of a chariot is represented by the monarchical regime, and when this regime is abolished, the whole world becomes filled with thieves, who then at once vanquish the unprotected subjects like scattered lambs. तो यहाँ पे बता रहे हैं, हे मेरे पुत्र, जो राजा है वो कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे कृष्ण का वर्णन करते हुए शमिक ऋषि बोलते हैं रतांग पाना। तो कृष्ण का एक नाम है रतांग पाने, क्योंकि कृष्ण रथ के पहिया को उठाते हैं भीष्म को मारने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है, और ऐसे राज्य जब बंद हो जाता है, ऐसे राज्य राजा जब नहीं रहते, तब क्या होता है, पूरे राज्य में चोर का संख्या बढ़ने लगता है। तदा ही चोर प्रचुरो विनक्ष्यति, तो चोरों का संख्या, डाकुओं का संख्या बढ़ने लगता है, और ऐसे अधर्म के पालन करने वाले लोग क्या करते हैं, साधारण जो प्रजा है, मासूम प्रजा है, वो बकरी की तरह इन लोगों का शोषण करते हैं। जैसे एक शेर होता है बकरी का शोषण करता है, वैसे अगर ऐसा राजा नहीं रहेंगे साधारण प्रजा को बचाने के लिए, मासूम प्रजा को बचाने के लिए, तो बहुत क्रूर व्यक्ति आके इन प्रजाओं पे और अत्याचार करेंगे। परपोट: अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, द मोनार्कियल रेजिम रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम लॉर्ड, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट। तो भागवतम के अनुसार ये जो राजाओं का पद्धति था, डेमोक्रेसी के पहले राजा हुआ करते थे, तो वो राजा का जो राज्य है वो क्या है, भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं ऐसे राजा। द किंग इज सेट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट पर्सन ऑफ गॉड हेड बिकॉज ही स्ट्रेन्ड टू अक्वायर द क्वालिटीज ऑफ गॉड टू प्रोटेक्ट द लिविंग बींग्स। तो राजा को भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है, क्योंकि राजा का ट्रेनिंग हुआ है, भगवान के गुण वो अर्जित करता है। तो भगवान के एक गुण क्या है, वो सभी जो प्राणी हैं उनको आश्रय देते हैं, उनकी रक्षा देते हैं। तो वैसे ही राजा का ये ट्रेनिंग है कि भगवान के भगवान के प्रतिनिधि बन के आप लोगों को राज्य करना है। तो ऐसे पहले हमारे वैदिक संस्कृति में राजा हुआ करते थे। द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज प्लान्ड बाय द लॉर्ड टू एस्टैब्लिश द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड महाराज युधिष्ठिर। तो इसलिए कृष्ण बार बार आते हैं, हर एक युग में अवतार लेते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध का रचना किया कृष्ण ने, क्यों? क्योंकि एक ही उद्देश्य था कि महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा राज्य करने चाहिए। तो कृष्ण का इच्छा था राजा भी सही होना चाहिए, तो ऐसा राजा को राजा बनाने के लिए कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध की रचना की, कुरुक्षेत्र युद्ध। एंड आइडियल किंग थरली ट्रेन्ड बाय कल्चर एंड डिवोशनल सर्विस विद अ मटीरियल स्पिरिट मेक्स अ परफेक्ट किंग। तो सही राजा कौन है, उत्तम राजा, आइडियल किंग कौन है? पहला, उसके अंदर संस्कृति है, दूसरा उसके अंदर भक्ति है, और उसके अंदर भौतिक रूप से भी कार्य करने की शक्ति है। तो ये सब का समन्वय होना चाहिए, संस्कृति भी होना चाहिए, उसके अंदर गुण भी होने चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए कृष्ण के प्रति, और वीर्यता भी होनी चाहिए। ये सब जब साथ में आएगा तब एक महान राजा का जन्म होता है। सच अ पर्सनल मोनार्की इज फार बेटर देन द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ऑफ नो ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे राजा जिनका सही से ट्रेनिंग हुआ है, संस्कृति में ट्रेनिंग हुआ है, वीर्यता में ट्रेनिंग हुआ है, भक्ति में ट्रेनिंग हुआ है, ऐसे राजा जो डेमोक्रेसी से चुने जाते हैं नेता वोट के माध्यम से, उनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। The thieves and rogues of modern democracy seek election by misrepresentation of votes, and the successful rogues and thieves devour the mass of population. तो सब नेता नहीं, पर काफ़ी नेता होते हैं जो उनका आप हिस्ट्री देखेंगे, आप उनका इतिहास देखेंगे और उनका पर्सनल लाइफ देखेंगे, उन लोगों ने बहुत सारा चोरी किया है. जैसे हिंदी में सेइंग है ना, हीरा चोर की खीरा चोर, दोनों चोरी होते हैं. खीरा मतलब तरबूज, तरबूज को खीरा बोलते हैं. कलिंगन, कलिंगन को खीरा, और हीरा, तो कौन सा भी चोर रहेगा, बड़ा चोर छोटा चोर दोनों चोरी हैं. एक बार अलेक्जेंडर के सामने अलेक्जेंडर ने एक उसके राज्य में एक चोर को पकड़ा था, और चोर आया अलेक्जेंडर के सामने, तो अलेक्जेंडर बोला तुमको फांसी चढ़ाएंगे, मेरे राज्य में चोरी करता है. तो चोर बोला तू भी चोर मैं भी चोर, मैं छोटा चोरी करता हूँ तो बड़ा चोरी करता है, तो प्रॉब्लम क्या है, जो छोटा चोरी करता है वो पकड़ा जाता है, बट जो बड़ा चोरी करता है वो नेता बन जाता है. उसको सीट मिल जाता है. तो जितना बड़ा चोरी करोगे, जितना बड़ा हाथ मारोगे, उतना बड़ा आदि बन जाता है. तो ये कलियुग है. तो जो नेताएं हैं जिनको एक्चुअली सेवा के भावना से उतरना चाहिए राजनीति में, वो लोग क्यों उतरते हैं, बहुत सारे लोग अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए उतरते हैं. और ऐसे नेता क्या करेंगे, जैसे शेर आके बकरियों को मारता है, हाँ उन पे अन्याय करता है, तो वैसे ही ऐसे लोग जो मास पॉपुलेशन है, जो समाज है, प्रजा है, जो मासूम है, उनका शोषण करते हैं. वन ट्रेंड मोनार्क is far better than hundreds of useless ministerial rogues, and it is hinted herein that by abolition of a monarchical regime like that of Maharaj Parikshit, the mass of people become open to many attacks of the age of Kali. To ek sahi raja jiska sahi se training hua hai sanskriti mein, bhakti mein, viryata mein, rajniti mein, aisa ek raja हजारों नेताओं से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग हुआ है. तो प्रभुपाद बोलते थे वन मून इज़ बेटर देन मिलियंस ऑफ स्टार्स. तो आप आसमान में देखेंगे तो बहुत सारे तारे दिखते हैं, पर उसमें एक है चंद्र. तो वो एक हजारे तारे हैं पर आकाश में प्रकाश नहीं आता, पर एक चंद्र काफ़ी है पूरे आकाश को उजाला बनाने के लिए. सो इंग्लिश में ये सेइंग है वन मून इज बेटर देन मिलियंस ऑफ स्टार्स. तो इसलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है. श्रील प्रभुपाद का अपेक्षा था कि इस्कॉन में हमारे बहुत सारे चंद्र होंगे, वील हैव मैनी मून्स इन इस्कॉन, क्योंकि एक चंद्र काफ़ी है पूरे दुनिया को रोशनी देने के लिए. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक सही राजा जिसका सही तरह से ट्रेनिंग हुआ है, शिक्षण हुआ है, वो बहुत सारे नेताओं से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है. दे आर नेवर हैप्पी इन एन ओवरली एडवर्टाइज्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि उस ऐसे राजा के राज्य में सब प्रजा खुश रहते हैं, पर जब ऐसा राजा नहीं रहता और बहुत सारे नेता रहते हैं जो लोगों का शोषण ही करना चाहते हैं, उससे क्या होगा, कलयुग बढ़ता है, कली का प्रभाव बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, और लोग खुश नहीं होते, लोग सब दुखी ही रहते हैं. द रिजल्ट ऑफ सच अ किंगलेस एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्स. तो अगर ऐसा राजा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अगले श्लोक में शमिक ऋषि बताते हैं. क्योंकि अभी श्रृंगी ने श्राप दे दिया है और अभी परीक्षित नहीं रहने वाले हैं, तो क्या होगा आगे जाके शमिक ऋषि बताने वाले हैं. टेक्स्ट 44. तद अद्य न पापम उपैति अनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर् विलुम्पकान् परस्परं गृणन्ति शपन्ति वृञ्जते पशुन् स्त्रियो रतान् पुरुदशयो जना. ट्रांसलेशन: Due to the termination of the monarchical regimes, and the plundering of the people's wealth by rogues and thieves, there will be great social disruptions. People will be killed and injured, and animals and women will be stolen. For all these sins, we shall be responsible. तो शमिक ऋषि बता रहे हैं अपने बेटे को श्रृंगी को कि ऐसा राजा जब नहीं रहेंगे, ऐसे राज्य जब बंद हो जाएंगे ड्यू टू द टर्मिनेशन ऑफ मोनार्कियल रेजिम्स, ऐसे अगर क्षत्रिय राजा नहीं रहते तो क्या होगा, लोगों का धन कौन लूटेगा, चोर और डकैत लूटेंगे। और बहुत बार चोर और डकैत के रूप में नहीं आते, अलग अलग रूप में आते हैं। चोर और डकैत के रूप में आते हैं तो सीधा पकड़ सकते हैं उसको, पर आजकल के चोर और डकैत अलग अलग तरह से आते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कोट सूट पहन के, टाई के साथ, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, पर दृष्टिकोण आप गौर से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट चोर है। तो जनरल चोर होता है वो इजीली पकड़ा जाता है, पर जो बहुत इंटेलिजेंट चोर है वो ऐसे मिल जाता है समाज में कि लोगों को समझ में नहीं आता ये चोर है, हम सबको उल्लू बना रहा है, समझ में नहीं आता। बहुत बार ट्यूबलाइट जलने के लिए 50-60 साल लग जाता है, बाद में समझ में आता है कि ये चोर निकला था, तब तक सब खजाना राज्य का लोगों का लूट के चले जाते हैं। तो इसलिए शमिक ऋषि बोल रहे हैं अगर ऐसा राजा नहीं रहेंगे तो ऐसे चोर डकैत बहुत बढ़ते हैं, और क्या होगा, पीपल विल बी इंजर्ड एंड किल्ड। तो लोगों के साथ अन्याय होगा, मारा मारी होगा, लोगों को मारा जाएगा, और स्पेशली एनिमल्स एंड विमेन विल बी स्टोलन, पशुओं का हत्या होगा, पशुओं को लोग चुरा के लेके जाएंगे और स्त्रियों को चुरा के लेके जाएंगे, और उनके साथ अन्याय और शोषण होगा। और ये सब हम देख रहे हैं कलयुग में, पशुओं को कैसे लेके जाते हैं, काउज गायों को ट्रक में भर भर के, चद्दर ढक के, अलग अलग तरीके से चुरा के लेके जाते हैं। तो ये कलयुग के लक्षण है। एंड फॉर ऑल दी सीन्स वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल। और शमिक ऋषि बोलते हैं ये सब पाप बढ़ने वाला है परीक्षित जब नहीं रहेंगे, और उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, हम दोनों इसके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हमारी वजह से ये हुआ है। देखिए शमिक ऋषि की महानता, वो श्रृंगी को नहीं बोल रहे हैं तुम जिम्मेदार रहोगे, वो बोल रहे हैं हम जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए जिम्मेदारी मेरा भी है, पिता के नाते जिम्मेदारी मेरा भी है। परपोट द वर्ड न वी इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, तो ये बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे शमिक ऋषि बोल रहे तद अद्य न, तो इसके लिए तद अद्य न पापम उपैति अनन्वयम, तो ये सब पाप किस पे आएगा, हमारे ऊपर आएगा, हम। द वर्ड वी इज वेरी सिग्निफिकेंट। जनरली बद्ध जीव जो परिपक्व नहीं है उसका दृष्टिकोण क्या है, जब सफलता मिलता है वो बोलता मैं, मेरे वजह से सफल हो गए, शेयर नहीं करता, वी नहीं बोलता, हम नहीं बोलता। हाँ, पर जब फेलियर होता है तो बोलता तुम्हारे वजह से फेलियर हो गया, उस समय बोलता नहीं है हमारे वजह से फेलियर हो गया, कोई बोलता है नहीं है। हाँ, तो ये महान व्यक्ति में फर्क है, जब दोष, जब उनका गलती होता है वो बोलते हैं मेरे वजह से, और जब वो सफल होते हैं वो क्रेडिट शेयर करते हैं हमारे वजह से। तो इसलिए श्रमिक ऋषि हालांकि दोष श्रृंगी का है पर वो स्वीकार करते हैं नहीं, ये दोष और ये पाप मुझे भी लगेगा। द सेज राइटली टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्राह्मणास एज अ कम्युनिटी फॉर किलिंग मोनार्कियल गवर्नमेंट एंड थस गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हु आर जनरली प्लंडरर्स ऑफ द वेल्थ ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट्स। तो इसलिए श्रमिक ऋषि उत्तरदायित्व लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये पूरे ब्राह्मण समाज का दोष है, ये पूरे ब्राह्मण समाज पे कलंक लगने वाला है, पाप लगने वाला है, क्योंकि हमारे वजह से क्षत्रिय कुल का खत्म होने वाला है। अभी क्षत्रिय जो राज्य कर रहे थे, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है की सूर्य सूर्य से एक क्षत्रिय का कुल आता है और चंद्र से, जैसे यदुवंश कृष्ण चंद्र से आते हैं और भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश से आते हैं। पर यहाँ पे शमिक ऋषि बोल रहे हैं ये जो पूरा क्षत्रिय कुल है वो पूरा रोकने वाले हैं हमारे वजह से, ब्राह्मणों के वजह से। और इससे क्या होगा, जब क्षत्रिय रुक जाएंगे और राजा राज नहीं करेंगे तब क्या होगा, डेमोक्रेसी आएगा, लोगों का वोट। और उससे जनरली बहुत सारे नेता रहते हैं, बहुत सारे अच्छे नेता भी हैं, बट बहुत सारे नेता रहते हैं जिनका काम ही राजनीति में उतरते ही है धन अर्जित करने के लिए, बस अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। द सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स कैप्चर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन विदाउट अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉस्परस कंडीशन ऑफ द सिटीजन्स। तो ऐसे नेता राजनीति में उतरते हैं और पोस्ट भी मिलता है उनको, अवसर भी मिलता है राज्य करने का, इलेक्ट भी हो जाते हैं, पर क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उत्तरदायित्व नहीं लेते, राज्य को प्रजा के लिए कुछ हित करने का उत्तरदायित्व नहीं लेते। तो पूरा भ्रष्टाचार ही बढ़ता रहता है। एवरीवन करप्ट कैप्चर्स द पोस्ट ऑफ पर्सनल ग्रेटिफिकेशन एंड थस इंस्टेड ऑफ वन किंग अ नंबर ऑफ इररिस्पॉन्सिबल किंग्स ग्रो अप टू टैक्स द सिटीजन्स। तो इसलिए वो पोस्ट को कैप्चर करते हैं, वो सीट पकड़ने के लिए, विन करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, झूठ बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, पर हित क्या है, सेवा का हित नहीं है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करना है, बस उतना ही सोचते हैं। और इसलिए एक महान राजा नहीं होता तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड राजा, तथाकथित राजा आ जाते हैं जिनका लक्ष्य क्या है, प्रजा से टैक्स वसूल करना, टैक्स लेना और क्या करना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, टू इंक्रीज देयर बैंक बैलेंस। इट इज फोरटोल्ड हियर इन दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ गुड मोनार्कियल गवर्नमेंट एवरीवन विल बी द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स बाय प्लंडरिंग रिचेस एनिमल्स वुमेन एक्सेट्रा। तो शमिक ऋषि बता रहे हैं कि ऐसे परीक्षित महाराज ऐसे जब राजा नहीं रहते तब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे नेता आएंगे और क्या होगा, ये राज्य में हर एक चोरी करते रहेगा अलग अलग तरीके से, कोई चोर के रूप में, कोई अलग रूप में चोरी करता रहेगा, किसका, धन का, पशुओं का, स्त्रियों का, इस तरफ ओनली एक ही चीज़ होगा, सामान्य प्रजा का शोषण होता रहेगा। और शमिक ऋषि बोल रहे हैं इसका दोष, इसका पाप हम दोनों को लगने वाला है और पूरे ब्राह्मण समाज को लगने वाला है। टेक्स्ट 45। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचर युतस्त्रयीमय ततोरत काम विनेशी आत्मनाम शुनाम कपीनाम इव वर्ण शंकर। ट्रांसलेशन, तो आगे क्या होगा, एट दैट टाइम द पीपल इन जनरल विल फॉल सिस्टमैटिकली फ्रॉम द पाथ ऑफ अ प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन इन रिस्पेक्ट टू द क्वालिटेटिव एंगेजमेंट्स ऑफ द कास्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी एंड द वैदिक इंजंक्शंस। Thus, they will be more attracted to economic development for sense gratification, and as a result, there will be an unwanted population on the level of dogs and monkeys. तो यहाँ पे बोल रहे हैं तब क्या होगा, तदा धर्म प्रविलीयते नृणाम। तो जब ऐसे राजा नहीं रहेंगे तब क्या होगा, systematically लोग धर्म से भटक जाएंगे, धीरे धीरे उनका पतन होता जाएगा, धर्म के मार्ग से पतन होगा। और वर्णाश्रमाचार्य युतस्त्रीमय, वर्णाश्रम का जो सिस्टम है भूल जाएंगे, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम नहीं करेंगे। और वैदिक जो इंजंक्शंस है, त्रयीमय का मतलब है वैदिक इंजंक्शंस, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपना जिंदगी जिएंगे नहीं। तो किसके लिए जिएंगे? सिर्फ अर्थ काम बिनी अभिनिवेशित का मतलब है सिर्फ उनका अब्सॉर्प्शन, अभिविनिवेशित का मतलब है पूरे तरह से तल्लीन अब्सॉर्ब रहेंगे, किसमें? दो ही चीज में, अर्थ और काम, धन कमाने में पूरा फोकस रहेगा उनका और इंद्रिय भोग, बस उतना ही है। अभी आप देखेंगे आज का सिचुएशन मॉडर्न युग का, आप किसी को भी पूछो लक्ष्य क्या है, दो ही लक्ष्य बताएंगे, अर्थ, ज़्यादा पैसा चाहिए बस, जो है उसे संतुष्ट नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहना है, हाँ, और दूसरा काम, बहुत इंद्रिय भोग चाहिए। तो आजकल का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? धर्म और काम, काम और अर्थ। धर्म और मोक्ष किसी के डिक्शनरी में है ही नहीं जनरली व्यक्ति के पास, ठीक है, काम होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, पर उसके साथ धर्म और मोक्ष भी होना चाहिए, पर आजकल के लोगों में धर्म और मोक्ष है ही नहीं, ये शब्द सिर्फ दो ही चीज है, अर्थ और काम। अर्थ क्यों चाहिए? हमारे काम की पूर्ति के लिए, काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। और ऐसा क्या, इसका रिजल्ट क्या है? शूनाम कपी नाम इव वर्ण शंकर। तो इसके वजह से पूरा जो वर्ण है, पॉपुलेशन है, पीढ़ी है, दूषित हो जाएगा, इतना गिर जाएगा कि शूना कपी नाम का मतलब, शूना का मतलब है कुत्ते और कपी नाम का मतलब है बंदर, बंदर और कुत्तों की तरह समाज बन जाएगा, बंदर और मतलब पशुओं की तरह समाज बन जाएगा। तो पशुओं का समाज क्या है? पशुओं का समाज सिर्फ इंद्रिय भोग करता है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो ऐसा समाज बन जाएगा पूरा राज्य। परपट, इट इज फोरटोल्ड हियरिन दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ मोनार्कियल रेजिम द जनरल मास ऑफ पीपल विल बी एन अनवांटेड पॉपुलेशन लाइक डॉग्स एंड मंकीज। तो यहाँ पे बोला गया है, थोड़े कठोर वचन है, सुनने के लिए थोड़ा तेज लग सकता है, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर सही राजा नहीं रहेंगे राज्य करने के लिए तो क्या होगा, पूरा प्रजा पशुओं की भांति हो जाएगा, और स्पेशली कुत्ते और बंदर की तरह। क्यों? एज द मंकीज आर टू सेक्सुअली इंक्लाइंड एंड डॉग्स आर शेमलेस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स द जनरल मास ऑफ पॉपुलेशन बॉर्न ऑफ इललेजिटिमेट कनेक्शन will systematically go astray from the Vedic way of good manners and qualitatively engagements in the castes and orders of life. क्यों? क्योंकि ये दो प्राणी हैं, बंदर है, हमेशा दूसरे जो स्त्री बंदर है उसके प्रति उसका आकर्षण रहता है, always sexually inclined, उसका जो इंद्रिय है बहुत उत्तेजित रहता है हमेशा, और कुत्ते जो हैं शेमलेसली रस्ते पे ही इंद्रिय भोग करते हैं, मैथुन करते हैं, उनके अंदर खुद संस्कार नहीं है, कुछ लज्जा नहीं है। तो ऐसा संस्कृति बन जाएगा, हाँ, जब ऐसा राजा नहीं रहेंगे पूरे कलियुग के लोग बेशरम बन जाएंगे, और जो सब अधर्म कार्य है खुलेआम गर्व के साथ रस्ते पे सबके सामने करेंगे। तो ये कलियुग का प्रभाव है। जैसे अजामिल की कहानी में प्रभुपाद बोलते हैं, उस समय अजामिल ने एक दृश्य देखा जो बुरा था, अभी कलयुग में हर एक रोड पे, हर एक गड़ी, हर एक कोने में अजामिल की ही सीन दिखती है, अजामिल कांड। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। तो इस तरह से लोग वैदिक ग्रंथ से और जो सही बर्ताव है, गुड मैनर्स, लोगों के पास संस्कृति नहीं रहेगा, लोग अपने आप को जेंटलमैन बोलेंगे। जेंटलमैन का डेफिनेशन क्या है? उनका कोट सूट पहन लिया, हाँ, वो स्पून और फोर्क यूज करने को आ गया तो उनका लगता है जेंटलमैन है, पर जेंटलमैन मतलब उसके अंदर गुण होने चाहिए, जेंटल गुण नहीं है तो जेंटलमैन कैसे हो गया? तो प्रभुपाद बोलते हैं आजकल का दुनिया क्या है, कोट सूट टाई पहना हुआ पशु समाज, दैट्स ऑल। जैसे आप पशु को कपड़े पहनाओ कैसा दिखता है, तो वैसे आजकल का समाज है, पशु का अंदर है, पशु का वृत्ति, पर पहनाया है बहुत सुंदर कपड़ा। द वैदिक वे ऑफ लाइफ इज द प्रोग्रेसिव मार्च ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द आर्यंस। द आर्यंस आर प्रोग्रेसिव इन वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक संस्कृति मतलब आर्यन बनना। आर्यन का मतलब क्या है? जो बहुत ऊंचे विचार है उसके, जिसका लक्ष्य है बहुत ऊंचा, उसका लक्ष्य क्या है, द वैदिक सिविलाइजेशंस डेस्टिनेशन इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, वेयर देयर इज नो बर्थ, नो डेथ, नो ओल्ड एज एंड नो डिजीज. तो सभ्य समाज का लक्ष्य क्या है, जो समाज का लोगों के लक्ष्य क्या है, उससे पता चलता है उनका स्तर क्या है, है कि नहीं. अगर किसी का लक्ष्य है सिर्फ इंद्रिय भोग करना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो समाज में आता है कि समाज का लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए लोगों का बुद्धि और ट्रेनिंग, सभ्यता और संस्कृति ज़्यादा बड़ा नहीं है. पर वैदिक संस्कृति में हर एक को आर्यन बताया जाता है. आर्यन का मतलब है उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है. उसका लक्ष्य क्या है, इंद्रिय भोग नहीं है पर भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है. तो इसका जो थोड़ा बहुत और तात्पर्य बचा है वो आज शाम के सेशन में कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.